Hey guys, I'm Bilal Amjad और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Architecture using MVC Web API, UWP and Microsoft Azure. So basically, आज हम Microsoft की तमाम latest technologies को देखेंगे और इनको बेहतर तरीके से understand करने के लिए हम एक Hello World application बनाएंगे जो कि basically to-do list की application होगी जिसमें आप अपनी रोजमर्रा की या कोई भी activities को आप अपने पास save कर सकते हैं और finally हम उसकी कुछ web APIs बनाएंगे जिनको हम consume करेंगे application के अंदर, Windows application के अंदर और finally ये deploy कहाँ पर होगी? Microsoft Azure के ऊपर. So let's proceed further. तो आज का रोड मैप हम लोगों ने 3-tier आर्किटेक्चर के ऊपर बात करनी है. दैट 3-tier आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है, उसके बाद हमने देखना है कि ASP.NET MVC में हम 3-tier आर्किटेक्चर को किस तरह से मैप कर सकते हैं. तो उसके बाद हम लोगों ने MVC का वॉक थ्रू करना है, एक MVC एप्लीकेशन बनानी है, उसके बाद हम लोगों ने वेब APIs बनानी है, उसको हमने Azure के ऊपर डिप्लॉय करना है और फाइनली उसको हमने एक विंडोज एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम करना है. सो बेसिकली व्हाट इज अ 3-tier आर्किटेक्चर? 3-tier आर्किटेक्चर है कि एक्चुअली 3-tier आर्किटेक्चर इज बेसिकली अ 3-way इंटरेक्शन इन अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट. क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हमारे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है और सेकंड दूसरे एंड पे हमारे पास एक सर्वर मशीन होती है जो कि आपको डाटा सर्व कर रही होती है. इस अब 3-tier आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि हमें पता हो कि इसके अंदर 3 tiers हैं, यानी कि 3 layers हैं. पहला टीयर यानी पहली लेयर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, देन हमारे पास एक बिजनेस लॉजिक लेयर होती है और फाइनली जो लास्ट जो हमें डाटा सर्व करती है वो डेटाबेस टीयर होती है या डेटाबेस लेयर होती है. 3-tier आर्किटेक्चर को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम लोग पहले 1-tier यानी सिंगल टीयर और मल्टी टीयर यानी 2-tier के ऊपर बात कर लें. सो बेसिकली आप अब पीछे चले जाइए अपने मेन फ्रेम के ज़माने में. अगर आप IT से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका CS से बैकग्राउंड है, तो आपको पता होगा कि हमारे पास स्टार्ट में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, ह्यूज कंप्यूटर्स जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जिनको चलाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी. उस ज़माने में आपने वापस जाना है. तब होता क्या था कि एक ही मशीन थी जिसको हम डंप टर्मिनल्स के थ्रू एक्सेस करते थे, यानी कि उनकी नेटवर्किंग डंप टर्मिनल्स के थ्रू बनाई जाती थी. डंप टर्मिनल्स क्या होते हैं? डंप टर्मिनल एक सिंगल आप समझ लेंगे एक ऐसा CPU है जिसके अंदर कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, लेकिन उसके साथ एक मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस अटैच किया गया होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद नहीं होता. यानी कि आप जो भी डाटा एंट्री कर रहे हैं या जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं. सो जब नंबर इसका यूजर्स का इंक्रीज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली ये उसकी प्रोसेसिंग को भी इफेक्ट करेगा और ये एक बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम था. तो तमाम रिसोर्सेज बेसिकली एक सिंगल और सेम कंप्यूटर के साथ अटैच होते थे. सो ये यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत पड़ी डुअल टीयर की या 2-tier की. डुअल टीयर या मल्टी टीयर हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर को. एक टीयर हमारा क्लाइंट है, सेकंड है सर्वर. तो अब क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर्स हैं और सर्वर हमारे पास एक सर्वर मशीन है. तो डुअल टीयर की एवोल्यूशन के साथ ज़रूरत पेश आई पर्सनल सॉफ्टवेयर की और अब विद द हेल्प ऑफ डुअल टीयर अब हम अपना डाटा डिफरेंट सर्वर पे रख सकते थे और हम साथ पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच कर सकते थे जो कि अपनी प्रोसेसिंग कर रहे थे, वो सिर्फ डाटा रिट्रीव कर रहे थे सर्वर्स के थ्रू. सो इससे ये प्रॉब्लम तो अब हमारी रिजोल्व होगी कि रिसोर्सेज अब सिंगल कंप्यूटर के साथ सेव नहीं हो रहे, शेयर हो रहे हैं. और इसके बाद लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स मजीद इवॉल्व हुई. वो प्रॉब्लम्स थी हमारे पास कि कनेक्शन जो थे इसके वो बहुत एक्सपेंसिव थे और दूसरी प्रॉब्लम थी कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स जो थे वो ये सर्वर जो था सर्व कर सकता था, यानी कि एक लिमिटेड नंबर यूजर्स का कनेक्ट हो सकता था सर्वर के साथ. सो ये भी कॉस्ट इन इफेक्टिव हुए क्योंकि मोस्टली जो थे यूजर जो थे वो अपना सिर्फ 2-3% था टाइम वो कंज्यूम कर रहे थे, तो आपको उसके लिए पूरे रिसोर्सेज आपको उसको एलोकेट करने पड़ते थे, जो कि ये भी कॉस्ट इन इफेक्टिव साबित हुआ. अब हमारे पास सिंगल टीयर सिस्टम भी फेल हो चुका था और हमारे पास डुअल टीयर जो हमारे पास आर्किटेक्चर था वो भी फेल हो चुका था. तो इस जगह पर हमारे पास इवॉल्व हुआ 3-tier आर्किटेक्चर. सो अब आपको 3-tier आर्किटेक्चर के बैकग्राउंड का पता चल चुका है कि बेसिकली 3-tier आर्किटेक्चर इवॉल्व कहाँ से हुआ. सो 3-tier आर्किटेक्चर इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फ्रॉम अ वेब सर्वर. तो यानी कि अगर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की एग्जांपल लें तो हमारा डेटाबेस सर्वर यानी कि एसक्यूएल सर्वर हमने होस्ट कर दिए क्लाउड पे, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं अपनी मशीन पे इंटरनेट के थ्रू और हमारी मशीन बेसिकली क्लाइंट है। सो दिस इज अ थ्री टीयर आर्किटेक्चर। और अब हम लोगों ने बात करनी है कि थ्री टीयर आर्किटेक्चर में हमारे पास लेयर्स कौन सी होती हैं, इसको थ्री टीयर क्यों कहा जाता है। थ्री टीयर के अंदर हमारे पास, जैसा मैंने बात की, कि सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर, देन बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। अब इनको हम एक्सप्लोर करते हैं कि बेसिकली ये थ्री टीयर्स जो हैं ये हैं क्या। मॉडल्स बेसिकली क्या हैं, कि मॉडल्स आपको पता है कि आपके डाटा को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं और इसके बाद हम मॉडल्स के अंदर अपनी सारी डाटा वैलिडिटी की लॉजिक्स और दूसरी लॉजिक्स डिफाइन कर देते हैं। और अगर आप एमवीसी से पहले आपका ताल्लुक है तो आपकी जो डेटाबेस के टेक्स्ट क्लास है वो भी इसी मॉडल का पार्ट होती है। सो बेसिकली मॉडल्स हमारे पास एक एप्लीकेशन टीयर है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर का या अपनी एप्लीकेशन का मॉडल जो है वो डिफाइन कर देते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का हम मॉडल डिफाइन कर देते हैं कि इसके मेंबर्स क्या होंगे, इसके फंक्शंस क्या होंगे। व्यूज़ हमारे पास प्रेजेंटेशन टीयर है। व्यूज़ का काम सिर्फ इतना ही है कि वो डाटा आपको प्रेजेंट करता है, जो भी उसको रिक्वेस्ट आती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास व्यूज़ जो हैं वो सिंपल .css HTML फाइल्स होती हैं जो कि HTML प्रोड्यूस कर रही होती हैं। सो फाइनली जो लास्ट टीयर हमारे पास है वो है कंट्रोलर का। कंट्रोलर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोसेसिंग HTTP रिक्वेस्ट। कंट्रोलर्स का काम सिर्फ इतना है कि उनके पास जो रिक्वेस्ट आती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा मॉडल लोड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है व्यू रिटर्न कर देते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो कंट्रोलर्स हैं वो एप्लीकेशन टीयर में ही पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास मॉडल्स थे वो एप्लीकेशन टीयर एज वेल एज डाटा टीयर का पार्ट है, जबकि कंट्रोलर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन टीयर, जहाँ पे हम अपनी बिजनेस लॉजिक्स वगैरह हम लोगों ने डिफाइन करते हैं, उसका पार्ट है। सो ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है आपके सामने कि ये बेसिकली आज हम लोगों ने एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम एक टू डू लिस्ट तैयार करेंगे और इसको डिफरेंट जगहों पर एक्सेस करवाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स दिस डेवलपमेंट। सो ये आपके सामने इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस। यहाँ से आपने फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करना है और न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास कुछ टेम्पलेट्स लोड होंगे प्रीडिफाइंड। यहाँ से आपने वेब को सिलेक्ट करना है और ASP.NET वेब एप्लीकेशन को, और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को कोई नाम दे सकते हैं। आपके पास ASP.NET के प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके सामने आएंगे। यहाँ से आपने MT सेलेक्ट करना है, MVC सेलेक्ट करना है और साथ में वेब API को सेलेक्ट कर लेना है और देन फाइनली आपने ओके का बटन क्लिक कर देना। सो फाइनली जो विजुअल स्टूडियो आपके लिए आपके टेम्पलेट को लोड कर देगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से कुछ फोल्डर्स कंट्रोलर्स मॉडल और व्यूज़ के बन चुके होंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करनी है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का मतलब है कि हम लोग सबसे पहले अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल्स को, व्यूज़ को और कंट्रोलर्स को बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ करूँगा इसके लिए, ताकि मैं अपनी डेटाबेस बना सकूँ। सो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर हमारी टू डू लिस्ट की डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर हम एक नया टेबल ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक आईडी होगा जो कि इंटीजर होगा। तो हम अपनी इस कॉलम को एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं और साथ ही हम इसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को ट्रू कर देते हैं, ताकि ये जो आईडी की कॉलम है इसके अंदर जब भी कोई रो ऐड होगी तो हमें आईडी को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली आईडीज में इंक्रीमेंट होते जाएंगे वन के गैप के साथ। यानी जो फर्स्ट रो होगी उसका पहला आईडी खुद ही से वन आ जाएगा, सेकंड का टू आ जाएगा, देन थ्री फोर एंड सो ऑन। सो इसके अंदर हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो होगी टाइटल हमारे टास्क का जो कि वाचर हो सकता है, और फाइनली हमारे पास होगी डिस्क्रिप्शन, ये भी वाचर होगी लेकिन इसको हम टेक्स्ट सेव करवा लेते हैं। हम अपने टेबल को सेव करवाते हैं, टेबल का नाम रख देते हैं टास्क लिस्ट। तो ये हमारी एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है टू डू लिस्ट की, जिसके थ्रू हम लोग अब अपनी MVC की एप्लीकेशन बनाएंगे। सो वापस आपने अपने विजुअल स्टूडियो में जाना है, राइट क्लिक करना है आपने अपने प्रोजेक्ट पे, ऐड की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, देन आपने यहाँ से ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये यहाँ पर डिस्प्ले ना हो रहा हो तो आपने न्यू आइटम को सिलेक्ट करना है, आप कंट्रोल शिफ्ट और ए को भी प्रेस कर सकते हैं अपने डायलॉग को ओपन करने के लिए, आइटम्स ऐड करने के लिए। जैसे ही आपके पास ऐड न्यू आइटम का एक डायलॉग अपीयर होगा, आपने वहां से डाटा को सिलेक्ट करना है और ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास ये मॉडल है टास्क का, ये टास्क का मॉडल है हमारे पास। हम यहाँ से एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट की ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, और जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है बेसिकली वो आपका DB कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली। अब हम यहाँ से अपना एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करेंगे, हमारे सर्वर का, मेरे सर्वर का है क्योंकि ये लोकल DB है, इसका नाम है लोकल DB और वर्जन इसका 11.0 है। आपके पास जैसे ही आप अपना करेक्ट डाटा प्रोवाइड कर देंगे इस फॉर्म को, आपके पास सारी डेटाबेसेस इस ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएंगी, जैसे कि अभी हमने टू डू लिस्ट बनाई थी। अब टेस्ट कनेक्शन आप यहां से क्लिक करें, यस टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल, ओके को क्लिक करें और वापस आपने डायलॉग को ओके कर देना है। अब यहां पर आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी और आपने इसका नाम रख देना है टास्क लिस्ट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम इससे टास्क लिस्ट के टेबल के अंदर डेटा जो है वो डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हम इसको टास्क लिस्ट का जो है नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगी, आप एंटिटी फ्रेमवर्क 6 भी यूज कर सकते हैं और 5 भी यूज कर सकते हैं। सो लेटेस्ट 6 है तो हम 6 को ही यहाँ पर यूज करते हैं। आपने नेक्स्ट को क्लिक करना है और जो आपके पास नेक्स्ट जो विजिट अपीयर होगा उसमें वो आपके टेबल्स को पॉपुलेट करके दिखाएगा, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है टास्क लिस्ट का, तो आप यहाँ से अपने टेबल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अपने मॉडल का नाम रख दें टास्क लिस्ट मॉडल, और फाइनली आपने फिनिश के बटन को प्रेस करना है। तो जो आपके पास विजुअल स्टूडियो है ये आपके लिए ऑटोमेटिकली सारा मॉडल खुद से क्रिएट कर देगा। सो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू आपके पास यहाँ पर आपके जो टास्क मॉडल जो हमारे केस में था, आपके केस में ये कोई भी मॉडल हो सकता है आपकी एंटिटी का, वो डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अगर आप अपने टास्क मॉडल डॉट EDMX की एक्सटेंशन के साथ जो आपके पास मॉडल क्रिएट है उसको एक्सपेंड करें, तो आपके पास टास्क मॉडल डॉट TT के अंदर टास्क लिस्ट डॉट CS के नाम से एक क्लास क्रिएट हुई होगी। आप अगर उसको ओपन करके देखें तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो है आपके एंटिटी का वो डिफाइन हुआ होगा। ये हमारा मॉडल जो है ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू क्रिएट किया गया है विजुअल स्टूडियो के थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क में। अब हम देखेंगे कि हमने इसको कंज्यूम कैसे करना है। इन अपनी विंडोज को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोलर ऐड कर लूँगा। यहाँ पर मैं MVC5 एम्प्टी कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ। अगर आपने कोई चाहते हैं कि कोई रूट कॉन्फ़िगरेशन के बगैर कोई आपके पास आप कंट्रोलर बना लें और उसके व्यूज़ जो हैं वो जैसी भी एप्लीकेशन चले तो ओपन हो जाए, तो आपने उसको नाम देना है होम कंट्रोलर का। एल्स आप अगर चाहते हैं कि आप रूट कॉन्फ़िगर करके कोई डिफरेंट नाम से आप कंट्रोलर बनाएं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ टास्क कंट्रोलर, और कोशिश करें कि आपकी कन्वेंशन जो सारी सिमिलर हो, जैसे हमने मॉडल बनाए हैं टास्क मॉडल और टास्क लिस्ट के नाम से हमने कंटेक्स्ट पर हमने, तो इस तरह हमने नेमिंग कन्वेंशन का जरूर ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स का एक कंट्रोलर है, तो हमने यहाँ पर एक व्यू क्रिएट कर लेना है इंडेक्स के अंदर। व्यू क्रिएट करने के लिए आपने एक्शन रिजल्ट के कीवर्ड पे या इस फंक्शन के अंदर या अपने इंडेक्स का जो आपका एक्शन रिजल्ट का फंक्शन है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एड व्यू के ऑप्शन को क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक एड व्यू का डायलॉग अपीयर होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट का। अगर हम लिस्ट का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो जो भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इस टेबल के अंदर या हमारे कंटेक्स्ट के अंदर पड़ी होंगी वो उनको एज ए लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले करवा देगा। मॉडल क्लास हमारे पास यहाँ पे टास्क लिस्ट और कंटेक्स्ट क्लास हमारे पास है टास्क लिस्ट कंटेक्स्ट। इसी तरह आपने इसको सेलेक्ट करके आपने ऐड का बटन जो है उसको क्लिक कर देना। आपके पास अगर ये एरर डिस्प्ले हो कि देयर वाज एन एरर रनिंग द सिलेक्टेड कोड जनरेटर, तो आपने क्या करना है, आपने इसको डायलॉग को क्लोज करना है और अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लेना है। क्योंकि जब आपका मॉडल ऐड होता है तो वो उसकी सारी की सारी लाइब्रेरीज या सारी की सारी फाइल्स जो हैं कंपाइल्ड प्रॉपरली नहीं होती, उसके लिए हम अपने सॉल्यूशन को रीबिल्ड करते हैं। जैसे ही हमारा सॉल्यूशन रीबिल्ड होगा और हम दोबारा यही प्रोसेस अपना करेंगे तो आप देखेंगे कोई एरर वहां पर जनरेट नहीं होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से राइट क्लिक एड व्यू और यहाँ पर हम अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट, अपनी मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे और कंटेक्स्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे और आपने ऐड का बटन क्लिक कर देना है। अब स्कैफोल्डिंग के थ्रू आपके पास पूरा व्यू क्रिएट हो जाएगा और इसको हम अब टेस्ट भी कर लेंगे। तो जैसे स्कैफोल्डिंग कंप्लीट होगी आपके पास यहाँ पर एक व्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक मॉडल भी ऑलरेडी यहाँ पर जो है इंक्लूड करवाया गया है विजुअल स्टूडियो की तरफ से, और यहाँ पर कुछ HTML के आप देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर हैं, HTML के कुछ कंट्रोल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सब कुछ विजुअल स्टूडियो ने आपके लिए विद इन फ्यू क्लिक्स आपके लिए इसको क्रिएट किया है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा बेसिकली व्यू कैसा है। तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा लोकल होस्ट है यहाँ पर हमारे कंट्रोलर का। अब यूआरएल के अंदर देखिए हमारा रूट क्या बन रहा है, हमारा सर्वर, उसके बाद हमारा कंट्रोलर एंड देन उसका एक्शन। ये जो एरर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट एन इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एरर मैंने कोडिंग के दौरान फिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में अक्सर डेवलपर जो है इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, जो अब हम लोग इसको फिक्स करने के लिए करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम इस एरर को फिक्स कैसे करेंगे। सो बेसिकली हमने अपने कंट्रोलर के अंदर अपने व्यू को कोई डाटा रिटर्न ही नहीं करवाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंटेक्स्ट ऐड करना है, अपने मॉडल का कंटेक्स्ट। हमारे मॉडल का नाम था जो हम लोगों ने टास्क का कंटेक्स्ट क्रिएट किया था, टास्क लिस्ट कंटेक्स्ट, इसका हम लोग एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे और हम अपने व्यू को इसके अंदर से डाटा जो है वो रिटर्न कर देंगे। सो अब मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करूंगा तो आप देखेंगे ये एरर फिक्स हो चुका होगा वहां पे। सो अब आप देखेंगे यहां पर मेरे पास मेरा व्यू लोड हो रहा है जबकि पहले यहां पर मेरे पास इसी पेज के अंदर एरर था, और अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास हमारा व्यू जो है वो लोड हो रहा है। यहां पर अगर मैं क्रिएट न्यू का हाइपरलिंक को क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक सर्वर एरर आएगा बिकॉज ये अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एक्शन या व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हम इसमें डाटा इंसर्ट करने की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जो कि निहायत सिंपल है। हम वापस अपने कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर एक एक्शन रिजल्ट क्रिएट करेंगे, एक्शन रिजल्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे क्रिएट का। बाय डिफॉल्ट जो भी आप क्रिएट करते हैं एक्शन रिजल्ट वो गेट मेथड के साथ होते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पर एक और क्रिएट का मेथड क्रिएट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम डिक्लेयर करेंगे कि ये वाला जो हमारा मेथड है वो HTTP पोस्ट पे चलेगा, ठीक है। और इसके पास हमारा एक टास्क लिस्ट का मॉडल होगा और हमारे व्यू को ये मॉडल जो है रिटर्न किया जाएगा। अब ये तो एक व्यू तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है। इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड, जब हमारे मॉडल स्टेट वैलिड होगी यानी कि कोई वहां पर वैलिडेशन का एरर नहीं होगा तब प्रोसीड होगा, वरना हमें सिंपल व्यू रिटर्न कर देगा। अगर हमारा जो मॉडल स्टेट है वो वैलिड है तो हम लोगों ने अपने DB इसके कंटेक्स्ट जो है हमारा टास्क लिस्ट का उसमें ऐड करवा देना है अपना टास्क, और फाइनली हमने अपनी चेंजेस को सेव कर लेना है और हम इसको यहाँ पर एक एक्शन पे भी वापस रिटर्न करवा सकते हैं जो कि रिडायरेक्ट टू एक्शन मेथड के थ्रू होगा, और हमारा एक्शन क्या है इंडेक्स वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। सो अब मैं यहाँ पर एक इसका व्यू क्रिएट करूँगा इस एक्शन रिजल्ट का, वही एड व्यू आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारे पास व्यू का नाम है क्रिएट। यहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे क्रिएट का, मॉडल क्लास हमारे पास टास्क लिस्ट है और हमारा कंटेक्स्ट भी ये है तो टास्क लिस्ट कंटेक्स्ट। तो अब मैं अगर ऐड के बटन को यहाँ पर क्लिक करूँ तो स्कैफोल्डिंग के बाद मेरे पास एक और व्यू क्रिएट हो जाएगा, और ये व्यू बेसिकली हमारे पास डाटा इंसर्ट करवाएगा डेटाबेस के अंदर। सो ये देखिए आप मेरे पास यहाँ पर वैलिडेशन की भी कुछ कंट्रोल्स ऐड हो चुके हैं, और ये सारा कुछ आपके पास विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली लेकर आते हैं, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं अब अगर इस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करूँगा और आप देखें कि अब मैंने विद इन फ्यू क्लिक्स पूरा एक व्यू क्रिएट कर लिया जहाँ से डेटाबेस के अंदर बाकायदा डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं। सो मैं अपने इसी प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ, अपनी स्क्रीन को, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो मेरे पास अब क्रिएट ये लोड हो चुका है, स्पिनर रुक चुका है, इसका मतलब है मेरी एप्लीकेशन लोड हो गई है। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू के बटन को जब क्लिक करूँगा तो आप देखें मेरे पास क्रिएट के लिए एक स्क्रीन अपीयर हो रही है। सॉरी फॉर द डिज़ाइन के लिए अभी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज जो है हमारी एप्लीकेशन पिक नहीं करी, हम उसको भी अभी फिक्स करते हैं। टाइटल में अगर दे दूँ यहाँ पर शॉपिंग, आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग, और मैं यहाँ पर क्रिएट का बटन क्लिक करूँगा तो अब मैं यहाँ पर मेरी प्रोसेसिंग रुकी है और मैं यहाँ पर अपने इसको टेबल में चेक करूँगा कि मेरे पास डाटा आया है कि नहीं। और टास्क लिस्ट के टेबल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा टॉप 1000 रोज। तो देखें आपके मेरे पास डाटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुके हैं। अब जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो दो हैं, एक तो हमारा डिज़ाइन प्रॉपर लोड नहीं हो रहा, दूसरा ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा वापस हमारे व्यू में। तो अब मैं अगर यहाँ से बैक जाऊँगा यानी कि अपने इंडेक्स पर टास्क के, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास शॉपिंग टाइटल और आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग ये भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसका डिज़ाइन और ये जो रीडायरेक्शन नहीं हुई उसको हम कैसे फिक्स करेंगे। तो रीडायरेक्शन का बेसिकली जो फंक्शन है जो रीडायरेक्ट टू एक्शन, ये काम करता है जब आप इसके साथ रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो अब जब भी हम कोई डाटा इंसर्ट करेंगे इसके साथ, तो अब ये बेसिकली हमारे पास इंसर्ट करते ही वापस अपने इंडेक्स एक्शन के ऊपर रिटर्न हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा आ रहा था प्रॉब्लम आ रहा था वो था हमारे डिज़ाइन का, कि हमारा डिज़ाइन लोड नहीं हो रहा था। तो हम देखते हैं अब कि हमने अपनी डिज़ाइन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर कुछ फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि व्यूज़ के अंदर हमारे पास शेड का है, इस शेड फोल्डर के अंदर हमारा लेआउट डिफाइन किया होता है। अब लेआउट के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास कंटेंट के अंदर site.css और bootstrap.min.css की दो लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं। site.css हमारे पास कस्टम स्टाइल, और अगर हम कंटेंट का फोल्डर एक्सटेंड करें अपना तो आप देखें site.css हमारे पास अवेलेबल है, जबकि ये bootstrap.min.css इस पाथ पे अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर bootstrap को इंक्लूड करवाना है। bootstrap को इंक्लूड करवाने के लिए आप अपने रेफरेंसेस के ऊपर, बाय डिफॉल्ट वैसे ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट होती हैं, लेकिन इस केस में अगर मेरे प्रोजेक्ट में नहीं है तो मैं इसको NuGet पैकेज मैनेजर के थ्रू इंक्लूड करवा लूँगा। बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट करें NuGet पैकेज मैनेजर में और आपने इंस्टॉल का बटन क्लिक कर देना है। अब आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की कुछ फाइल्स जो होंगी वो आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवा देगा। सो अब आप देखें हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स जो सारी कंटेंट के फोल्डर में आ चुकी हैं। अब मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से बिल्ड करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास जो डिज़ाइन का प्रॉब्लम था वो भी रिजॉल्व हो चुका होगा, और जो हमारे पास एक और बग आ रहा था कि हमारा जब हम एक टास्क ऐड कर लेते थे तो वापस हमारे इंडेक्स पे हमें रीडायरेक्ट नहीं करवा रहा था, और वो भी फिक्स हो चुका होगा। सो अब मैं अगर अपने इसी व्यू को रीलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास व्यू जो है अब वो बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम, इंडेक्स वगैरह डिस्प्ले हो रहे हैं। ये एप्लीकेशन का नेम भी हम अपने इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हेडर आ रहा है वो लेआउट पेज के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा होगा एप्लीकेशन नेम के नाम से, नेम पर ब्रांड में एप्लीकेशन नेम, आप इसको चेंज करके टू डू लिस्ट एप्लीकेशन भी रख सकते हैं। और अब मैं अगर अपने अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करूं तो मेरे पास ये एप्लीकेशन का नाम भी चेंज होकर टू डू लिस्ट एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुका होगा लाइक दिस। अब मैं अगर यहां पर क्रिएट न्यू के हाइपरलिंक को क्लिक करता हूं और यहां पर टाइटल में लिखता हूं आई हैव टू अपलोड अ सेशन, और मैं जब क्रिएट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वापस मेरे व्यू पे भी रिटर्न हुआ है और यहाँ पर एक नया टास्क भी ऐड हो चुका है। अब एडिट डिटेल्स और डिलीट, ये जो आपने इन सिनेरियोज को अब आपने अपने प्रैक्टिस के लिए खुद से परफॉर्म करने हैं, और इन केस इफ यू फील एनी काइंड ऑफ ट्रबल आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ये था हमारा पार्ट वन अपने थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हमने थ्री टीयर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया और हमने एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर कुछ काम किया है। हमने एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन डेवलप की है। अब यहाँ पर जो मेजर कंसर्न है मेरा, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है हमारा थ्री टीयर आर्किटेक्चर। हम अगर वापस आ जाए अपने थ्री टीयर आर्किटेक्चर के ऊपर, तो आप देखिए हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी है, प्रेजेंटेशन टीयर हमारे पास ये आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है हमारा ये इंडेक्स का व्यू, ये बेसिकली अगर मैं विजुअल स्टूडियो निकालूँ, यहाँ पर हमारे पास जो ये व्यूज़ हैं ये हमारी प्रेजेंटेशन टीयर है। हम अपने सारे व्यूज़ जो हैं वो अपने प्रेजेंटेशन टीयर जितनी भी इन व्यूज़ के अंदर डिफाइन कर देते हैं लेआउट डॉट सी एस एस एच टी एम एल के अंदर। तो व्यूज़ का आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंटेशन टीयर का पार्ट है। जो मॉडल है हमारा, ये जो अभी हम लोगों ने मॉडल बनाया है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के थ्रू, ये मॉडल बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन टीयर और एज वेल एज डेटा टीयर दोनों का काम कर रहा है यहाँ पे, जबकि हमारा कंट्रोलर जो है इस वक्त वो एप्लीकेशन टीयर है। तो अब आपको पता चला कि एमवीसी जो है बेसिकली थ्री टीयर आर्किटेक्चर ही है। तो हम लोगों को सेपरेट कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह डिफरेंट से अपनी डेल और पैल यानी डाटा एक्सेस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर्स और एप्लीकेशन लेयर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमवीसी की अप्रोच यूज़ करते हैं तो यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो ये था बेसिकली आज का हमारा सेशन का पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम इस सेशन की APIs किस तरह बनाएंगे, हमने इस टू डू लिस्ट की एप्लीकेशन की APIs किस तरह से बनाएंगे, और फाइनली हम अपनी डेटाबेस और APIs को अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट Azure के ऊपर डिप्लॉय भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारा नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।